मार्केट में कुछ लोग मोबाइल मुझे बेच के जाते हैं, फिर वो चंद दिनों के बाद वो मोबाइल में यूज़ करता हूँ या बेचता हूँ तो वो बंद हो जाते हैं ना, लॉक हो जाते हैं, पता चलता है कि ये चोरी के मोबाइल है। ये मैंने मोबाइल तो ये खरीदे हैं मेरे लिए, अब ये कैसा कि ये मोबाइल को मैं रखूं बेचूं क्या करूं, मेरे लिए जायज़ है कि नहीं जायज़ है, क्योंकि मुझे उस वक्त पता नहीं था कि ये चोरी का मोबाइल है, लेकिन बाद में जब सीपीएलसी लॉक होता है तो पता चलता है कि ये चोरी का मोबाइल है। अब मेरे लिए कैसा कि आया कि मैं इसको बेचूं या ना बेचूं, आप मुझे बताएं।
अल्लाह अकबर। इसमें ऐसा है कि शरई मसला के चोरी का माल जानबूझकर खरीदना ये तो हराम है। या अब इस तरह का गुमान गालिब हो रहा है कि ये चोरी का है, सब भी नहीं खरीद सकते। मसलन कोई करीना ऐसा है जिसकी फतार में मिसाल दी गई है कि कोई जाहिल है, उसका बाप भी जाहिल था, जानता भी है, अब वो दीनी किताबें आकर या दुनियावी किताबें या अनपढ़ आदमी लेकर आया है और ये आपको बेच रहा है, तो ये करीना जा रहा है कि ये कहां से आई इसके पास, ये उठा तो नहीं लाया किसी, तो ये भी ना खरीदे, ये भी जायज नहीं है। हाँ, अगर कोई कंफर्मेशन हो जाती है कि इसको किसी ने गिफ्ट दी है तोहफे में तो वो खरीद सकते हैं। फिर दूसरा एक मोबाइल, अब तो काफी तरक्की हो गई, इसकी मालूम के तरीके हैं, एक जो मालूम हो जाती है कि ये चोरी का है या नहीं है। एक तो ये कि सीपीएलसी, इससे भी फोन करके मालूम कर सकते हैं। बैरून मुल्क से अगर कोई मोबाइल डायरेक्ट आया है तो एक वेबसाइट है IMI, यहां से चेक करें तो भी स्टेटस पर आ जाएगा कि ये मोबाइल ब्लैक लिस्टेड है, यानी चोरी का है, या नहीं है तो भी आ जाएगा। तो इस तरह मतलब कोई मोबाइल बेचने आए तो यू चेकिंग हो सकती है उसकी। हाँ, ऐसा काबिले इत्मीनान भी लोग होते हैं, पता होता है, तो उससे बगैर चेक करके भी लेंगे तो कोई मसला नहीं खड़ा होगा इंशाल्लाह। लेकिन ये जहां भी शक पड़े, अनजान आदमी है, तो ये चेक करके लें तो मसला ही नहीं। अच्छा, अब ले लिया, निकला चोरी का, इरादतन नहीं लिया, जानबूझकर चोरी का नहीं लिया, अब निकला चोरी का कि वो अब वो पता चल गया, अब क्या करें? तो इसका ये है कि अब थोड़ी कुर्बानी है इसमें, इसका असल मालिक तलाश करना होगा। असल मालिक ना मिला तो इसके वारिसों, इन मालिक फोत हो गया मसलन, तो वारिसों को देना होगा। अब ना मालिक मिला ना वारिस मिले, कुछ पता नहीं किसका है, तो अब ये कि किसी शरई फकीर को जो जकात का मसलन मुस्ताहक है तो उसको बगैर नियत सवाब दे दे, इस तरह आप फारिग हुए जैसे इससे। अच्छा, अब यहाँ आपको वसवसा आएगा, यार मैंने इतनी रकम लगाई, मैंने चोरी का तो लिया नहीं था, इतनी रकम लगाई और अब मैं तो आजमाइश में आ गया कि मैं इसको मतलब यूं यूं करूं और फिर मेरी रकम भी जाए और मैं यूं दे दूं। इसमें ऐसा है कि इस तरह के बहुत सारे खर्चे होते हैं जो बंदे को करना पड़ता है बाजू का। अब जैसे गाड़ी चला रहा है वो मतलब बिल्कुल संभल के चला रहा है, फिर भी एक्सीडेंट हो गया, बंदा मर गया या एक्सीडेंट हो गया, तो कानून तो आपको छोड़ेगा तो नहीं ना। वैसे ही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे कई मामला पे तो हम करोड़ों रुपए कमा भी रहे ना यार, अब बीमार हो जाते हैं तभी खर्चा तो करते हैं, या मेरा कसूर क्या था कि मैं बीमार हो गया, तो हम सब कर ही रहे होते हैं ना। तो ये इसमें ये ढारस है कि आप जब हुक्म शरीयत समझकर ये चोरी का मोबाइल, जिस तरह मैंने तरीका अर्ज किया, अगर इसको आप फारिग करते हैं और पहुंचाते हैं तो हुक्म शरीयत पर अमल करने का इतना सवाब मिलेगा कि इंशाअल्लाह आपका दोनों जहां में बेड़ा पार होगा। हाँ, बरकत होगी इंशाअल्लाह। हुक्म शरीयत पर अकल के घोड़े नहीं दौड़ाए जाते कि मेरा इसमें क्या कसूर है, मेरा उसमें क्या कसूर है, पर जेब भी कट गई तो आपका क्या कसूर था यार, रोतो के बैठे जाते ना, आग लग जाती है आपका क्या कसूर था, आग लग जाती है, डकैती पड़ जाती है, अपने आप तो चोरियां डकैतियां होती है ना, तो इतनी रकम चली गई और दीवार सर से मारोगे तो भी वो रकम तो नहीं मिलनी। सब्र करें, सब्र करेंगे तो अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। बंदे को सब्र करना चाहिए, अल्लाह की रिजा पर राजी रहने में भलाई है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला علی محمد۔